الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کے پاک نام سے سورہ نساء کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس میں نساء یہ امراۃن کی جمع ہے جس کے معنی ہے عورتیں. اس میں چونکہ عورتوں کے مسائل سے متعلق بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں, اس لحاظ سے اس سورت کا نام علامتی نام سورہ نساء رکھا گیا. سورت کے اندر 176 آیات ہیں, 24 رکوع ہیں. اس کا زمانہ نزول سن 3 ہجری سے لے کر سن 5 ہجری تک کے لگ بھگ ہے. اس میں وراثت کی تقسیم, یتیموں کے حقوق, اس لیے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کی شہادت کے بعد یہ معاملہ, اب سارے یہ مسائل کھڑے ہوئے تھے, ان بارے میں تفصیلی ہدایات آئیں. اسی طریقے سے صلاۃ الخوف, حالت ننگ میں نماز کے احکام وغیرہ, یہ سن 4 ہجری میں آئے. اور باقی پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم وغیرہ کے احکام, غزوہ بنی مستلق جو سن 5 ہجری کے اوائل میں ہوا اس میں آئے. اسلامی سوسائٹی کی تنظیم, اس سے متعلق ابتدائی احکام تو سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. اب زیادہ تفصیلی احکام جس میں خاندان کا ادارہ, وراثت کی تقسیم, نکاح کتنے میکسیمم ہو سکتے ہیں, عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی, یتیموں کے حقوق, معاشی معاملات کی درستگی, خانگی جھگڑوں اور تعزیرات کا قانون, شراب نوشی, طہارت, پاکیزگی وغیرہ سے متعلق احکام, اسی طریقے سے مخالف انقلاب قوتوں سے کشمکش اور اس بارے میں ہدایات, اور یہ کہ دعوت اور تبلیغ کا پہلو بھی اس صورت کے اندر واضح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو, الذی خلقکم, جس نے تمہیں تخلیق فرمایا, من نفس واحدہ, ایک جان سے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا, وخلق منہا زوجہا, اور اسی سے اس کا جوڑا تخلیق فرمایا, حضرت حوا سلام علیہا, وہ بھی نوع انسانی میں سے, وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے کثیر تعداد میں پھیلا دیے مرد اور عورتیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم باہم ایک دوسرے کو سوال کرتے ہو واسطہ دے کر, اور رحم رشتوں کا خیال کرو, ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالی تم پر خود نگران ہے, نگہبان. یہاں آپ غور کریں گے کہ سورت کا آغاز براہ راست بغیر کسی تمہید یا حروف مقطعات کے ہوا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی بنیادی بات, پوری انسانیت کو اپنا تقوی اختیار کرنے کی دعوت. اور یہ بھی جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح ارشاد فرماتے وقت جو آیات تلاوت فرماتے تھے ان میں سے ایک تو تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جو ہم نے کل پڑھی، اور ایک آیت یہ سورہ نساء کی پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر رہے تھے، اس کے علاوہ سورہ احزاب کی آخری رکوع کی دو آیات پڑھتے تھے. تو اس آیت میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی، جس نے سارے انسانوں کو ایک ہی انسان آدم علیہ السلام کے ذریعے سے تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا سلام علیہا کے ذریعے سے ساری نسل انسانی پھیلی ہے. اس لحاظ سے انسانوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے کہ خالق اور مالک ان کا ایک ہے، تمام انسان اس لحاظ سے برابر ہیں، تو ان کا خالق بھی ایک ہے اور ان کے والدین بھی ایک ہے. اور اس لحاظ سے یہ بھی بتایا گیا کہ عورت بھی بنی نوع انسان میں سے ہے، کم تر نہیں ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم باہم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، سوال کرتے ہو. جب کبھی خدا نخواستہ گھر میں کوئی ناچاتی ہو جائے تو آخری بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے اصلاح احوال کر لو، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو. اس لیے کہ یہ رحمی رشتے وہ قدر مشترک ہیں کہ جس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر پیچھے چلتے جائیں تو سب کے سب جا کر حضرت حوا سلام علیہا پر جا کر سارے رشتے جمع ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس اعتبار سے سارے انسان آپس میں بہن بھائی ہیں، کوئی انسان ہونے کے ناطے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور مرتبے کی بنیاد بتائی ہے وہ وہی ہے جو یہاں پر کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر اللہ کے ہاں کوئی عزت اور احترام کا مستحق ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سب پر نگران ہے، نگہبان ہے. یعنی اگر تم کوئی زیادتی کرو گے تو کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ خود اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی پوری پوری اکاؤنٹیبلٹی لے گا. وآت الیتام اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو. اب جو معاشرے کے ضعیف اور کمزور طبقات ہیں ان کے بارے میں ہدایات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، یعنی یتیموں کے مال جو تمہاری سپرویژن میں ہے وہ ان کو ان میں سے کوئی چیز ناجائز ہڑپ نہ کرو، بلکہ ان کو ان کے مال دے دیا کرو. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور نہ بدل لو ناپاک یعنی ناقص مال کو پاک مال کے بدلے، یعنی اچھا مال رکھ کر اس کی جگہ ردی مال ملا کر ان کو واپس مت دے دو. ولا تاکلوا اموالہم الى اموالکم، اور نہ کھا جاؤ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی یہاں پر یتیم کے حقوق کا خصوصی خیال اور اس کے مال کو امانت سمجھتے ہوئے پورا پورا لوٹانے کی تلقین کی گئی ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ فرمایا گیا کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی انہیں ان کے مہر وغیرہ کی ادائیگی یا ان کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو دوسری عورتوں میں سے، مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار. یہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ چار نکاحوں کی اجازت ہے، لیکن اس کو مشروط کیا گیا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، اللہ تعدلو، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدتن، تو پھر صرف ایک ہی خاتون، ایک ہی سے نکاح کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری ملک یمین یعنی جو لونیاں ہیں. اس میں جو لونی کا کانسیپٹ ہے اس کو اختصار کے ساتھ یہ جان لیجئے کہ جنگ میں وہ خواتین جو گرفتار ہو کر آئیں، ان کے اپنے جو بھی ملک کے لوگ ہیں ان کو کوئی فدیہ وغیرہ دے کر آزاد نہ کروائیں، اور اب وہ جب اسلامی معاشرے کے اندر ہوں اور اسلامی حکومت اگر انہیں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے تو وہ ان کے ساتھ بیوی والا تعلق رکھ سکتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں نہ تو کسی جگہ پر جنگ کے ذریعے سے مسلمان خواتین کو فتح کر کے لا رہے ہیں، نہ ہی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں وہ خواتین ان کے درمیان تقسیم کی جا رہی ہیں. اس لیے چونکہ اس وقت اس حکم پر عمل کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ بحث میں جانے کی بجائے صرف اصولی بات جان لینی کافی ہے. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بھی گھر کی ملازمہ یا کوئی اور آزاد عورت اس کو اس طرح سے لونڈی کا دتا دے دیا جائے، ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس وقت چونکہ اس کی اجازت تھی موجود تھی، اس لیے کہا گیا کہ اگر ایک بیوی یا پھر اپنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان سے تم یہ تعلق رکھ سکتے ہو. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ظلم نہ کرو. اس میں جو بات کہی گئی کہ اگر سے ایک سے زیادہ نکاحوں کی اجازت ہے لیکن اسے عدل کی شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، اور عدل کی شرط یہ ہے کہ جو چیزیں بھی ناپ تول میں آ سکتی ہیں، اس میں وقت بھی، اس میں روپیہ پیسہ بھی، اس میں فیسلٹیز بھی، ان سب کے اعتبار سے برابری کا سلوک اگر کر سکتے ہو تو پھر ایک سے زیادہ کی گنجائش ہے. اصل میں ہمارا دین فطرت ہے، اس میں انفرادی طور پر جو ایکسپشنز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. تو اس کے اعتبار سے اگر خدا نخواستہ کسی کی پہلی بیوی بیمار ہو یا کوئی اور اس کو ایسے مسائل ہو جس کی وجہ سے اسے دوسری بیوی کرنی پڑ جائے، تو اس میں بھی اس کو پھر عدل کی شرط جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور اگر وہ عدل نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا، تو پھر اسے ایک پر ہی اکتفا کرنا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ یہ زیادہ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ایسے کہ تم ظلم نہ کرو، یعنی ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ. ایک کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اچھا سلوک اور دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس میں کمی کو تھی، یہ ظلم اور زیادتی ہوگی. وات النساء صدقاتهن نحلا، اور عورتوں کو دے دیا کرو ان کے نہر خوشی کے ساتھ. یہ بھی جو نکاح میں جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے ہم نے تو خیر رسومات کے تمہار مان لیے ہیں، وہ سب ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ایجاب اور قبول ہے، اور اس میں مہر کا تعین، اور وہ مہر باقاعدہ ادا کیا جانا چاہیے، یا کم از کم اگر فوری طور پر ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو ادا کرنے کی پختہ نیت ہونی چاہیے، اور فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی میں وہ ادا کر دینا چاہیے، ورنہ کیونکہ وہ خامن کے ذمے قرض ہوتا ہے، اور اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کا یہ قرض ادا کیا جانا ضروری. فائن سب نالا تم انشئی من ہو نفسن فکلو ہو ہنی ام مریا، بس اگر وہ اور تمہاری یعنی بیویاں تو وہ عورتیں اگر اپنی خوشی سے کچھ اس میں سے چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو تم اس میں سے ہنی ام مریا رشتہ پچتا کھا سکتے ہو، وہ تمہارے لیے جائز. لیکن یہ نہیں کہ عورت کے گردن پر جو ہے وہ تلوار رکھی ہوئی ہے کہ تم مہر معاف کرو ورنہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایسا نہیں. بلکہ اگر گویا کہ مرد تو اسے پورا دے، پھر اس کے بعد اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو اسے تم بخوشی سے استعمال کر سکتے ہو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور مت دو اپنے مال نادانوں کو، یعنی جو یتیم ابھی جو سمجھدار نہیں ہے ان کو مت دو وہ تمہارے وہ مال جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری گزر بسر کا، قیام کا، بقا کا ذریعہ بنایا ہے، بلکہ ورزقوہم ان کو کھلاؤ پلاؤ، فیہا اس میں سے، وقسوہم ان کو پہناؤ، وقولو لہم قولا معروفا اور ان سے کہو اچھی اور بھلی بات، یعنی فراخ دلی کے ساتھ ان کو لک آفٹر کرو، لیکن جب تک وہ ابھی اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنے اس مال کو صحیح طریقے سے سنبھال سکیں اس وقت تک تمہیں اس کو لک آفٹر کرتے رہنا چاہیے. گویا کہ اس میں یہ بھی اس کے اندر بلٹ ان میسج ہے کہ اگر کوئی اسلامی جو اجتماعی معیشت ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جنہیں صحیح شعور نہ ہو ان کے استعمال کا، تو اس وقت جو ہے اس کے غلط استعمال سے روکنا تاکہ معاشرے کے اندر فساد برپا نہ ہو، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہا کرو جب تک کہ وہ اپنی نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں، یعنی وہ چھوٹی موٹی ذمہ داری دے کر انہیں جان سے پرکھتے رہو کہ وہ اپنے معاملات کو سنبھالنے کے قابل ہوئے کہ نہیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تمہیں معلوم ہو ان کے اندر کوئی تمیز، کوئی رشد، کوئی ہدایت، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر انہیں ان کے مال لوٹا دو. یعنی ایک ہے انسان کی جسمانی اور جسمانی بلوغت اور ایک ہے عقلی بلوغت. یہاں کہا گیا کہ پہلے چیک کرو کہ وہ عقلی طور پر بھی بالغ ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور جب تم نے ان کے اندر اپنے برے بھلے کی تمیز جو ہے وہ پاؤ تو پھر انہیں ان کے مال لوٹا دو. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور ان کے مال نہ کھا جاؤ فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں. ومن کان غنیا فلیستعفف، جو کوئی غنی ہو تو اسے چاہیے کہ بچتا رہے، یعنی وہ مال جو یتیم کا مال لکافر کر رہا ہے तो उसमें से कुछ भी ना ले अगर अल्लाह ताला ने उसे अदरवाइज माकूल सोर्सेज ऑफ इनकम दे रखे हैं वो गनी है। वमन कान फकीरन, और जो कोई मोहताज हो, फलयाकुल बिल मारूफ, तो उसे भी चाहिए कि वो सिर्फ उसमें से खाए मारूफ और भले तरीके से। यानी अगर कोई शख्स उसकी अपनी जरूरियात भी पूरी नहीं हो रही है, अब वो यतीम के माल को लुकाफ्त करने में लग जाता है, तो जाहिर है उसके पास टाइम भी उसका लग रहा है और उसको हो सकता है अपने कारोबार का भी हर्ज हो रहा हो, तो अगर उसके पास इतनी अपनी जाती माश नहीं है कि उसकी अपनी गुजर बसर हो सके, तो वो सिर्फ उसमें से बकदरे जरूरत और बकदरे किफायत ले सकता है वो मारूफ जिसको हर कोई समझे कि हाँ वाकई ये इतना जायज। फैजा दफा तुम इलेहिम अम्वालहुम, पर जब तुम उन्हें उनके माल लौटा दो, फअशहदु अलैहिम, तो उन पर गवाह बना लिया करो। वकफा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह खुद काफी है हिसाब लेने वाला। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वलअक्रबून, और मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो कुछ छोड़ जाएं उनके वालदैन और करीबी रिश्तेदार। अब ये विरासत के कानून के बारे में तमहीदी बात आ गई कि अल्लाह ताला ने जो भी मरने वाला जो कुछ छोड़ जाए वालदैन या करीबी अज़ीज़ जो फौत हो जाए, तो उसमें मर्दों के लिए हिस्सा रखा है। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वलअक्रबून, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उसमें से जो कुछ छोड़ा वालदैन ने और करीबी रिश्तेदारों ने। मिम्मा कल्ला मिन्हु और कसुर, खा वो थोड़ा हो या ज्यादा, नसीबम मफरूदा, वो एक हिस्सा है फर्ज किया गया मुतय्यन हिस्सा, जिसका जिक्र अभी इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। ये तारीख में कुरान मजीद ने पहली मरतबा औरतों को भी उसी तरीके से विरासत का हकदार ठहराया जिस तरह से कि मर्द हकदार है। वरना आपको इल्म है कि हमारे ये पड़ोस में जो हिंदू कल्चर है उसमें औरत को विरासत में सिरे से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है, बल्कि इसीलिए उनके यहाँ जहेज की लानत वहीं से हमारे यहाँ भी आई है कि जनाब अब औरत जब शादी हो रही है तो उसको एक ही दफा दे दिलाकर रुख्सत करना है, और फिर तो उसकी लाश भी जो है वो अपने वालदैन के घर नहीं आनी चाहिए, बल्कि वो भी कहो हम बस पड़ते अपने शोहर के साथ ही जो है वो भी सती हो जाए, वो भी मर जाए, तो इसे बहुत ऊंचे दर्जे की नेकी जो है वो, अगर वो भी साथ जल जाए तो इसे ऊंचे दर्जे की नेकी समझते हैं। इसके बरक्स कुरान कहता है कि नहीं, विरासत में औरत का भी वैसे ही हक है जैसे कि मर्द का हक है। वाइजा हजर अल किस्मत उलुल कुर्बा, और जब हाजिर हो तकसीम विरासत के वक्त कराबतदार, यानी ऐसे कराबतदार जो वारिस नहीं है, वल यतामा और यतीम, वल मसाकीन और मोहताज, फर्जुकूहुम, तो उन्हें भी उसमें से फर्जुकूहुम मिन्हु, उन्हें उस तरीके में से उन्हें भी खिलाओ। वकूलू लहुम कौलम मारूफा, और उनसे बात हो माकूल भली और अच्छी। यानी ये वो रिश्तेदार हैं जिनका विरासत में कोई कानूनी हक तो नहीं है, लेकिन अगर वो जरूरतमंद हैं और इस उम्मीद से जमा हो गए हैं कि अब इनके दरमियान रुपया पैसा तकसीम हो रहा है, कुछ हमारी भी मदद ये कर दें, तो सारे वरसा की बाहमी रजामंदी से ऐसे जो भी मुस्तकीन हैं उनकी भी जो है वो मदद करने की मैयत के वारसों को तलकीन इसके अंदर आई है। वालियतरकुमिनफा, और लोगों को डरना चाहिए कि अगर वो छोड़ जाएं अपने पीछे अभी कमजोर छोटी औलाद, खाफू अलैहिम, तो उन्हें कितने अंदेशे होंगे उनके बारे में। ये यतीम के वरसा को बताया जा रहा है कि हक तलफी से बचने के लिए जरा गौर करो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा मामला हो जाए कि तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हारे पीछे छोटे छोटे बच्चे हो, तो तुम्हें उनके बारे में कितने अंदेशे होंगे। इसी तरीके से अब ये कोई जाने वाला जो चला गया है, इसकी औलाद अभी छोटी है, तो इसको तुम बिल्कुल उसी तरह से लुकाफ्त करो जैसी अगर खुदा न खासा तुम्हारा इंतकाल हो जाता तो तुम्हें परेशानी होती, उससे ज्यादा तुम्हें इनकी फिक्र करनी चाहिए। फलियतकुल्लाह, तो बस उन्हें चाहिए कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। वलियकूलू कौलन सदीदा, और उन्हें चाहिए कि बात कहें बिल्कुल मुनासिब, सही, सीधी और सच्ची। इन्नल्लज़ीने याकुलूना अम्वाल अल्यतामा ज़ुल्मन, और बेशक वो लोग जो यतीमों के माल खाते हैं नाहक जुल्म और ज्यादती के साथ, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो तो अपने पेटों में भरते हैं आग। यानी बजाहिर मुर्गे मुसल्लम खा रहे हैं लेकिन असल में आग के अंगारे हैं जो अपने पेटों में भर रहे हैं। वसा यसलौना ज़ईरा, और वो दाखिल होंगे दोज़ख़ में। अब वो आयात आगे जिनमें विरासत की तकसीम के मुतल्लिक कवानीन बताए गए हैं, ये कुरान मजीद के मुश्किल मुकामात में से है। और वैसे ये जान लीजिए कि कुरान मजीद का जो मौजूदा होने के बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से एक ये भी है कि ये जो विरासत का कानून जो कहते हैं आदि फिका, जिसको सही विरासत का कानून मालूम हो, आदि फिका उसे आ जाती है। और कुरान मजीद ने यह आदि फिका सिर्फ दो आयात के अंदर बयान कर दी, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी जामियत के साथ इसमें ये सारी बातें। फरमाया यूसी को मुल्ला फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में। असलन वैसे ये विरासत से मुतल्लिक जो है वो चार आयात में ये हुक्म इस तरह से आता है कि एक आयत हमने पीछे पढ़ी जिसमें तमहीद आई, दो आयात में इसकी तकसीम से मुतल्लिक तफसीली हुक्म आ जाएंगे, और एक आयत सूरह निसा के आखिर में फिर आएगी जिसमें इसका एक हिस्सा थोड़ी सी जो वजाहत दरकार है। तो इस तरह से कुल चार आयात में विरासत का पूरा कानून जो है वो बयान हो गया। फरमाया यूसी को मुल्ला फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत फरमाता है, ताकीदी हुक्म दे रहा है तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़ाकरे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सायैन, एक मर्द के लिए हिस्सा है दो औरतों के बराबर, यानी जो बेटा तुम्हारा है उसे दो बेटियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। फइन कुन्ना निसाअन फौका थनतैन, पर अगर हो सिर्फ लड़कियां ही दो से ज्यादा, फलहुन्न सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए है दो तिहाई तिरके का, यानी जो तिरका वो छोड़ जाए उसका टू थर्ड जो है वो उन बच्चियों को मिलेगा। इसमें दो या दो से ज्यादा दोनों के ऊपर यही अप्लाई करता है। मइनकानत वाहिदतन फलहन निस, और अगर हो सिर्फ एक ही बच्ची तो उसके लिए है आधा हिस्सा। वाले अब वही ही लिकुल्ले वाहिद मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका, और उसके वालदेन के लिए, उसके माँ बाप के लिए, उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा जो कुछ वो छोड़ जाए। इन कान लहू वलद, अगर हो इसकी औलाद जाने वाले की यानी फौत होने वाले की। फैलम यकुल लहू वलद, और अगर उसकी औलाद ना हो, वो वारिसा हो अबवा हो, और उसके वारिस हो उसके वालदेन ही, फल उम्मीद सुलुस, तो फिर माँ को मिलेगा एक तिहाई हिस्सा, और चूंकि अब वारिस उसके सिर्फ वालदेन है तो बकिया दो तिहाई हिस्सा वालिद को मिले। फैंकान लहू इखवतुन, और अगर उसके कोई भाई भी हो, फल उम्मीद सुलुस, तो फिर उसकी माँ को है एक बटा छह हिस्सा। मिन बाद वसीयतिन यूसी बिहा औदैन, बाद में उस वसीयत को पूरा करने के जो वो कर जाए या कर्ज पे जो वो अदा कर जाए, यानी जो कर्ज के जो अदा करने के बाद जो कि वो छोड़ जाए। यानी ये विरासत की तकसीम, इससे पहले दो चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले जो वो जाने वाला कर्ज छोड़ गया है उस कर्ज की अदायगी होगी। उसके बाद हमने वसीयत के कानून में यह पढ़ा था कि एक बटा तीन हिस्से तक अपने माल के वो वसीयत कर सकता है, तो जो जायज वसीयत उसने की हो वो अप टू वन थर्ड उस पर अमल किया जाएगा। फिर जो कुछ बचेगा उसकी तकसीम के ये कवानीन है जो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, ला तदरून अय्युहुम अक्रबु लकुम नफा, तुम नहीं जानते कि कौन उनमें से ज्यादा है तुम्हें नफा पहुंचाने के एतबार से। यानी ये अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुतय्यन किए हैं ऊपर वालदैन के और नीचे औलाद के, ये अल्लाह ने अपनी हिकमत बालगा के तहत किए हैं। तुम्हारे तो जज्बात की कैफियत हो सकता है, कभी तुम कहते हैं कि जनाब जब इंसान की अभी शादी नहीं हुई होती या कोई बच्चे नहीं होते तो कहता है सारी विरासत वालदेन को दे दी जाए। अब जब बच्चे और बीवी होती है तो उसमें यह होता है कि सारी विरासत इन्हीं को मिलनी चाहिए, वालदेन को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो तुम्हें नहीं पता है कि नफे तुम्हें नफा पहुंचाने के एतबार से कौन बेहतर है। फरीदतम मिन अल्लाह, ये हिस्से हैं अल्लाह की तरफ से मुतय्यन शुदा, इनके बारे में इनकी हिकमतें वही जो है वो सबसे बेहतर जानता है। इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, और बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। यानी ये जो तकसीम है ये अल्लाह के इल्म कामिल और इसकी हिकमत बालगा के तहत उसने साथ सबके नफे नुकसान को पेश नजर रखते हुए अल्लाह ने यह तालीम फरमाई। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारे लिए है आधा हिस्सा उसमें से जो छोड़ जाए तुम्हारी बीवियां, इल्लम यकुल लहुन्न वलद, अगर उनके कोई औलाद न हो। यानी बीवी है उसकी औलाद कोई नहीं है, तो जो विरासत वो छोड़ के जाएगी उसका आधा हिस्सा शौहर को मिलेगा। फइन कान लहुन्न वलदुन, और अगर उनकी औलाद है, फलकुमुर रुबू मिम्मा तरकना, तो तुम्हारे तुम्हारे लिए है चौथाई हिस्सा उसमें से जो वो छोड़ जाए। मिम्बाद वसीयत यूसीन बिहा औदैन, उस वसीयत को पूरा करने के बाद जो वो कर जाए या उस कर्ज की अदायगी के बाद जो वो छोड़ जाए। वलहुन्नर रुबू मिम्मा तरक्तुम, और उनके लिए है चौथाई हिस्सा उसमें से जो तुम छोड़ जाओ। इल्लम यकुल लकुम वलद, उस सूरत में कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। फइन काना लकुम वलद, और अगर तुम्हारी हो औलाद, फलहुन्नर सुमुनु मिम्मा तरक्तुम, तो उनके लिए है आठवां हिस्सा उसमें से जो तुम छोड़ जाओ। मिम्बाद वसीयतिन तूसून बिहा औदैन, उस वसीयत को पूरा करने के बाद जो तुम कर जाओ या उस कर्ज की अदायगी के बाद जो तुम छोड़ जाओ। अब देखिए इसमें तीन मर्तबा अल्लाह ताला ने कर्ज की अदायगी और वसीयत इनको पूरा करने के जो है ताकीदी हुक्म दिया है, और रेपिटेशन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि कितनी इसकी अहमियत है और कितनी इसकी जरूरत है। वैंकान रजुलन यूरा तो कलालतन, और अगर कोई मर्द हो जिसकी मीरास है लावलत, कलाला कहते हैं जिसके ना वालदैन हो ना ही औलाद। अब इमरातुन, या कोई खातून हो ऐसी ही कलाला, यानी ना उसके वालदैन अब हयात है ना ही उसकी अपनी कोई औलाद है। वलहू अखुन और उख्तुन, और उसका कोई भाई या बहन हो। फलिकुल्ल वाहिद मिन्हुम सुदुस, तो फिर हर एक उनमें से मिलेगा छठा हिस्सा। फइन कानू अक्सर मिन ज़ालिका, और अगर वो ज्यादा हो यानी एक एक से ज्यादा हो इससे, फहम शुरका उसकी सुलुस, तो वो सब शरीक है एक तिहाई में। मिन बाद वसीयत यूसा बिहा औदैन, उस वसीयत को पूरा करने के बाद जो की जाए या उस कर्ज की अदायगी के बाद जो वो छोड़ जाए। गैर मुज़ार, बशर्ते कि वो वसीयत किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। वसीयतम मिन अल्लाह, ये ताकीदी हुक्म है, वसीयत है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला भी है और बहुत हिल्म वाला, बहुत बुर्दबार भी है। अब देखिए शुरू किया था तो यूसी को मुल्ला, अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म दे रहा है, जहां खत्म हो रहा है तो फिर कहा वसीयतम मिन अल्लाह, ये वसीयत है अल्लाह की। अल्लाह को पता था कि इन इंसानों को ये सब कुछ बताने के बावजूद इन्होंने यही कमजोरियां इनसे होनी है कि औरतों को, बच्चियों को और बहनों को हिस्सा देते वक्त इनके दिल जो है वो बहुत छोटे पड़ रहे हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि आज भी, शहरों के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, देहातों में आज भी ये रवाज चल रहा है कि ये बहनें बेटियां ये अपना हिस्सा ना ही दें तो अच्छा है। और कई वालदैन तो अपनी जिंदगी में ही जो है सारी जायदाद अपने बेटों में तकसीम कर जाते हैं कि बाद में ये झगड़ा ही ना खड़ा हो, और अगर हो भी तो फिर ये अगर कहीं किसी ने, बेटी ने अपना हिस्सा मांग लिया तो भाई जो है वो आइंदा के लिए कहेंगे इसके तो हमने मुंह नहीं लगाना है कि ये इसने हमें हमसे जायदाद में हिस्सा मांगा है। हालांकि अल्लाह ताला ने जब की ताकीद के साथ बताया है तो इसका मतलब है कि अगर किसी का इस दुनिया में हम हक रख भी लेंगे, वो माल हरगिज जायज नहीं है, हराम है, और उसका वबाल दुनिया में भी और आखिरत में भी इंसान को फेस करना पड़ेगा। इस लिहाज से जो अल्लाह पाक ने हिस्से बता दिए हैं, ये जैसे मैंने किया कि ये एक मुश्किल कानून है, इसको महज सिर्फ कुरान ये तर्जमा पढ़ के या सुन के आप इसको नहीं समझ सकते, इसकी आगे बहुत सारी फिर बारीकियां होती हैं। तो जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन हो उसमें बाकायदा किसी आलम दीन से, किसी मुफ्ती से, वो सारी अपनी फैमिली की सिचुएशन उसको बताकर और फिर उससे मालूम करके कि किस किस के कितना कितना हिस्सा बनता है, बिल्कुल अदल और इंसाफ के साथ। यहां तक देखिए कि अल्लाह ताला ने इसकी जो तफासील है उसमें ये तक है कि अगर कोई एक तो है ना वो बच्चे जो औलाद अभी जिंदा है, अगर कोई जाने वाला उसका बच्चा अभी प्रेगनेंसी मां के पेट में है, उसका भी हिस्सा अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, वो भी अगर जिंदा पैदा होता है तो उसे भी इसमें से हिस्सा मिलेगा। इसलिए विरासत की तकसीम के बारे में यहां तक भी बताया गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि दरमियान में ये प्रेगनेंसी वाला मामला भी हो तो या तो उसको डेफर किया जाए टिल सच टाइम जबकि वो पैदाइश हो जाए और पता चले कि बेटा है या बेटी है और उस तरह से उसके मुताबिक उसको हिस्सा दिया जा सके, और अगर किसी वजह से उसको जल्दी करना भी जरूरी है तो फिर तकसीम के एतबार से बेटे का हिस्सा रखकर जो है उसको तकसीम किया जाए। बाद में अगर बेटी हो गई तो चलिए जो कुछ बच जाएगा वो फिर वर्षा को मिल जाएगा, लेकिन ये तो नहीं है कि वर्षा पहले ले गए हो, अगर बेटी के हिसाब से ले लिया और बाद में बेटा हो गया तो उसका हिस्सा कहां से आएगा। तो इतनी इसके अंदर बारीकियां हैं, इसलिए इसको जो अल्लाह ने इतनी ताकीद के साथ फरमाया है तो उसी स्पिरिट के साथ हमें इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। देखिए बरकत अल्लाह डालता है, वो क्वांटिटी से बरकत नहीं आती है, बल्कि अल्लाह के हुक्म को दिलो जान से मानेंगे तो अल्लाह ताला उसी के अंदर जो है हमारी जरूरियात को पूरा करने का सामान फराहम करेंगे। दिल का हुदूद अल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं। वमन युति अल्लाह व रसूलहू, तो जो कोई भी इताअत इख्तियार कर देगा अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी इसमें पूरा पूरा जो एहतमाम रखेगा अल्लाह के और रसूल के अहकाम का, युदखिलहु जन्नात इन तजरी मिन तहतिहा अलअनहार, उसे तो अल्लाह दाखिल फरमाएगा उन बागात में जिनके नीचे नदियां जारी होंगी, खालिदीन फीहा, वो उनमें हमेशा रहेंगे, वजालिकल फौजुल अजीम, और यही है बहुत बड़ी बहुत भारी कामयाबी। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, इसके बरक्स जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वयतअद्दा हुदूदहू, और उसकी हुदूद से तजावुज करेगा आगे बढ़ेगा, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, तो अल्लाह ताला उसे दाखिल फरमाएगा आग में दोजख में जिसमें वो हमेशा रहेगा, वलहुम अजाबुम मुहीन, और उनके लिए बड़ा ही एहानत आमेज दर्दनाक अजाब होगा। अब माशरती इस्लाह और माशरे के अंदर आपको पता है कि अगर सेक्स डिसिप्लिन है, जिंसी बेरारवी को काबू में रखा गया है, तो माशरे के अंदर अमन सुकून और चैन होता है, और अगर खुदा न खास्ता माशरे के अंदर जिंसी बेरहरवी आम हो जाए तो फिर वहां पर जो है वो ना औरत को इत्मीनान है या ना मर्द को इत्मीनान है। इसलिए अब हिदायत आनी शुरू होगी, फरमाया वल्लाती यातीन अल्फाहिशत मिन निसाइकुम, जो कोई भी बदकारी करे तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहदु अलैहिन्न अरबअतम मिनकुम, तो तलब करो गवाह उन पर चार आदमी अपने में से, चार गवाह अहले ईमान में से होने चाहिए। फैन शाहिदू फाम से कुहुन्ना फिल बुयूत, पर अगर वो गवाही दे कि हाँ उन्होंने ये काम होता देखा है, तो फिर उनको बंद रखो अब अपने घरों में या जेल वगैरह में, हत्ता या तवफा हुन्नल मौत, ता वक्ते के आ जाए उन्हें मौत, और ये जाल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता बना दे। अभी चूंकि जो इसकी जिना की सजा वो बाद में सूरह नूर में नाजिल हुई है, इसलिए उस वक्त तक के लिए कहा गया कि इनके लिए ये सजा है। उसके बाद जब सूरह नूर में वो हुक्म आ चुके हैं जानिया मर्द और जानिया औरत का, तो उसके बाद ये जो हुक्म जो है ये भी मनसूख हो गया। वल्लजान यातिया निहा मिनकुम, और जो कोई भी दो तुम में से ऐसा करें, इससे मुराद दोनों ली गई है, एक तो यह है कि मर्द और औरत, और एक यह है कि दो मर्द या दो औरतें हमले कौमे लूत अगर वो करें, फआजूहुमा, तो उन दोनों को अजियत दो, उनको गोया कि उनकी तजलील करो, उन्हें मारपीट करो, फइंताबा व असलहा, पस अगर वो तौबा करें और इस्लाह अहवाल कर लें, फआरिदू अनहुमा, तो फिर उनका पीछा छोड़ दो, इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला और मुसलसल रहम फरमाने वाला है। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीन यअमलून सूअ बिजहालतिन, बेशक तौबा तो अल्लाह पर है, अल्लाह के जिम्मे है उन लोगों की तौबा कबूल करना जो किसी बुराई का इर्तकाब कर बैठे जहालत में, नादानी में, जज्बात से मगलूब होकर, सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, लेकिन फिर वो तौबा करें करीब ही फौरी तौर पर जैसे उनको एहसास हो, शऊर हो, तनब्बो हो, फौलाएगा यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो यही वो लोग हैं जिनकी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। गोया कि यहां बताया गया है कि इंसान से, कल भी हमने ये मजमून पढ़ा कि अगर कभी नादानी में गलती हो जाए जज्बात से मगलूब होकर, तो जैसे ही उसको एहसास हो, शऊर हो, फौरी तौर पर अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। तौबा को डिले नहीं करना है, डेफर नहीं करना है, और अपनी इस गलती को रैशनलाइज या जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करे और तौबा करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यकबल तौबत अल अब्द मालम यगर कर, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल फरमाता है जब तक के वो निजा का आलम और वो जो छाती से गर गर की आवाज आखिरी वक्त के जो आखिरी सांसों की होती है वो ना आनी शुरू हो जाए, उससे पहले पहले जब भी इंसान अल्लाह की बारगाह में रुजू करे अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। लेकिन यहाँ ये जान लीजिए कि तौबा हो तौबा की शराइत के साथ, जैसे कि मैंने किया था कि महज इस्तगफार के कलिमात दोहरा लेने से तौबा नहीं होती है, उसकी जो शराइत है वो भी इख्तिसार के साथ जरा नोट फरमा लीजिए। सबसे पहली शर्त है दिली निदामत और शर्मिंदगी, ऐसी शर्मिंदगी कि वाकई इंसान को तन्हाई में उसकी आंखों में नमी आ जाए कि मेरा मालिक मेरा खालिक मेरा मोहसिन मुझ पर इतने एहसानात फरमाने वाला और मैं उसी की नाफरमानी उसी की हुक्मदूली उसी का गुनाह कर बैठा हूं, बहुत अपने ऊपर जुल्म किया है ज्यादती की है, ये गोया के अपने उसको वाकई दिली निदामत और शर्मिंदगी हो। उसके बाद उसकी दूसरी शर्त यह है कि जिस गुनाह में जिस बुराई में जिस मासीयत में पड़ा हुआ है उसको देन एंड देयर छोड़ देना, ये नहीं कि वो बुराई भी हो रही है और साफ तौबा की तस्वीर भी चल रही है, बल्कि उसको फौरी तौर पर छोड़ देना, आइंदा न करने का पक्का और मुसम्मम इरादा, ये तीसरी शर्त है। और उसके साथ ये भी है कि अगर किसी का कोई हक मारा है तो उसका वो हक उसको लौटा दिया जाए। इसमें जो अल्लाह ताला के फराइज हैं जिनकी कजा होती है वो भी, और जो बंदों के हकूक हैं वो तो बिलखसूस, अगर किसी का माल गसब किया है तो वो उसको वापस करे, अगर किसी को जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई थी अपने आप को उसके सामने पेश करे कि भाई अब तू जो है चाहे तो मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे चाहे तो बदल ले ले। जिस तरह से भी हुआ गोया के जिस इंसान की हक तलफी उसने की है उसको जब तक वो शख्स माफ ना करे अल्लाह भी माफ नहीं करता है। तो तौबा इन चार शराइत के साथ की जाए तो फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा कबूल फरमाता है, अल्लाह ने खुद अपने लिए ऐसे लोगों की तौबा कबूल करना अपने जिम्मे लिया हुआ है। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलूनस सय्यिआत, और उन लोगों की तौबा नहीं है जो बुराइयां करते रहते हैं, हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, यहां तक कि उनमें से किसी के सामने मौत आ हाजिर होती है। काला इन्नी तुबतुल आन, उसको ये कहता है कि अब मैंने तौबा की, तो ऐसे शख्स की तौबा जबकि मौत सर पर आ खड़ी हो वो कबूल नहीं है। मलल लगीन यमूतून हुम कुफार, और ना ही उन लोगों की तौबा है जो मरते हैं इस हाल में कि वो काफिर ही है, यानी कुफर की हालत में ही जिनका जो इस दुनिया से जाते हैं उनकी भी तौबा कबूल नहीं होती। उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, और ऐ ईमान वालों तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम जबरदस्ती औरतों के मालिक बन बैठो। इसमें वहां पर उनकी मुख्तलिफ जहालत ये भी थी कि अगर किसी शख्स की दो बीवियां हैं तो वो बड़ा बेटा जो होता था अपनी मां को तो छोड़कर बाकियों को जो है वो अपने निकाह में जो है वो ले लेता था, या इसी तरीके से औरतों के जबरदस्ती वारिस बनना ये भी है कि उन्हें निकाह सानी से रोकना, अगर खुदा ने खास्ता उनका शौहर इंतकाल कर गया है या तलाक वगैरह हो गई है, तो अब जो मैंने कहा कि हमारे यहाँ इसको ऊंचे दर्जे की नेकी समझा जाता है कि वो औरत अगर बेवकी की हालत में अपनी सारी उम्र अपने ससुराल में गुजार दे तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी वफादार बीवी थी, और अगर वो किसी और जगह पर जायज हलाल जो अल्लाह ने जिसकी इजाजत दी है वो निकाह का इरादा करे तो इसके ऊपर जो है उसके वरसा वालदैन या उसके जो भी ससुराल वाले हैं वो उसको अच्छा नहीं समझते हैं, तो फरमाया उनके जबरदस्ती वारिस मत बनकर मत बैठ रहा करो। वला ताज़ुलूहुन्न लितज़हबू बिबादि मा आतैतुमूहुन्न, और ना ही तुम उन्हें इसलिए रोक कर रखो कि वो तुम उनसे ले लो जो कुछ कि तुमने उन्हें दिया था मेहर वगैरह, इल्ला यातीन बिफाहिशतिन मुबय्यना, सिवाय इसके कि वो किसी खुली हुई बेहयाई का इर्तिकाब करें। वआशिरूहुन्न बिलमारूफ, तो उनके साथ गुजर बसर किया करो, मुआशरत इख्तियार किया करो मारूफ तरीके के साथ भले तरीके के साथ, क्या कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से हुस्ने सुलूक की तलकीन आई है। फाइन करे तुम हुन्ना, पस अगर तुम उनको नापसंद करो, फासान तक रहो शयन, हो सकता है कि कुछ बईद नहीं कि तुम्हें कोई चीज नापसंद हो। मैं जालल्लाह उसकी खैरन कसीरा, और अल्लाह ने उसी में बहुत बड़ी भलाई बहुत बड़ी खैर तुम्हारे लिए रखी हो। इसलिए कि देखिए कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं है, किसी कोई भी शख्सियत आइडियल नहीं हो सकती, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां होंगी, कुछ ना कुछ खराबियां होंगी। तो जो कमी कोताही है सिर्फ इंसान उसी पर नजर ना रखे, बल्कि कमी कोताही को अगर वक्ती तौर पर नजरअंदाज भी कर दे तो हो सकता है कि बाकी जो अल्लाह ने खूबियां रखी हैं उनके जरिए से तुम्हें बहुत बड़ी खैर जो है उसके जरिए से हासिल हो जाए। वही नातर अरब तुम उससे विदाला जौजिन मकान जौजिन, और अगर तुम इरादा करो चाहो एक किसी औरत को बदलना, यानी दूसरी औरत के जरिए से, यानी एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत से निकाह करना चाहो, वहां पे ही तुम इहदाहुन्ना किंतारन, और तुम दे चुके हो उनमें से एक को बहुत सा माल, यानी जिसे अब तुम छोड़ने का इरादा कर रहे हो, फला ताखुजू मिन्हु शैआ, तो मत वापस लो उसमें से कुछ भी, अताखुजूनहु बुहतानम इस्मम मुबीना, तो क्या तुम ये लेना चाहते हो उसको नाहक और गुनाह के तरीके से, यानी गोया के जो भी तोहफा तहाइफ दिया था अब वो चाहे ढेरों माल की शक्ल में हो, जाएगा कि किंतार वो बहुत सारा माल भी क्यों ना हो उसमें से कोई चीज भी वापस ना लो, वकई फता खुजू न हो, और तुम क्यों कर उसको ले सकते हो, वकद अफवा बाज़ुकुम इला बाज़, हालांकि तुम तो एक दूसरे के साथ बेहिजाब हो चुके हो, खलबत में मुलाकात कर चुके हो, वाखज़ मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, और तुमने उन्होंने तो तुमसे लिया था बहुत बड़ा बहुत गाढ़ा कौलो करार, इसलिए कि निकाह जो अल्लाह का नाम लेकर किया जाता है गवाहों की मौजूदगी में किया जाता है, और उसकी में वो इतना बड़ा अहद एग्रीमेंट करने के बाद अब उसमें तो जिंदगी भर साथ निभाने का था, अब अगर अलहदगी की नौबत आ रही है तो किस मुंह से जो है वो जो तोहफे तहाइफ दिए थे वो सब वापस लेते हो। वला तनकहू माना कहा आबाउकुम मिनन निसा, और मत निकाह करो उनसे जिनसे निकाह किया हो तुम्हारे बापों ने औरतों में से, इल्ला मा कद सलफ, सिवाय इसके जो पहले गुजर चुका। ये जो मैंने अर्ज किया था कि वो जो बड़ा बेटा अपनी बाकी सुतीली माओं को भी अपनी बीवी बना लेता था उससे जो है वो मना किया गया, फरमाया इन्नहु काना फाहिशतम व बक्ता, बेशक ये तो बड़ी ही खुली हुई बेहयाई और इंतहाई बेजारी और नापसंदीदगी वाला अमल है, वसा सबीला, और बहुत ही बुरा रास्ता है। अब जो रहमी ऐसे रिश्ते जो हमेशा के लिए हराम है, जिसे कहते हैं जो महरम है, वो उनकी फहरिस्त जो है वो गिनवाई जा रही है, और ये वो रिश्ते हैं जिनसे जिंदगी में कभी भी निकाह नहीं हो सकता। फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएं, और इन्हीं माओ के जैल में ही दादियां नानियां वगैरह, यानी ऊपर कुछ रिश्ते जो जाते हैं, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, व खवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फीफियां फूफियां, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, व बनातुल अखी, और तुम्हारे भाइयों की बेटियां यानी तुम्हारी भतीजियां, व बनातुल उख्ती, और बहन की बेटियां यानी भांजियां, व उम्महातुकुम उल्लती अर्दअनाकुम, और तुम्हारी वो माएं यानी वो रबाई माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, यानी अगर के माँ जिसने जन्म दिया वो और थी, लेकिन बचपन में जब दूध पीने की उम्र होती है उस उम्र में अगर किसी और खातून का दूध पिया है तो वो भी माँ के बराबर है, और उसके भी जो इसी तरीके से उसकी बेटी जो है वो बहन जैसा उसके साथ जो है वो रिश्ता होता है। वह खवातों को मिनर रजा, और तुम्हारी रजाई बहने यानी तुम्हारी दूध शरीक बहने जो उसी उस खातून से थी जिनका तुमने दूध पिया है, वह महातुल इसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएं यानी तुम्हारी सासें, बराबाइबुकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम, और तुम्हारी वो ले पालक बच्चियां जो तुम्हारी गोदों में हैं, मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, तुम्हारी उन औरतों से जिनके साथ तुम हमबिस्तरी कर चुके हो, यानी मुराद इससे यह है कि कोई खातून जिसके साथ जिसका पहले भी किसी जगह निकाह हो वहां से उसकी कोई बच्ची थी, उसके बाद वहां से वो शौहर फौत हो गया या तलाक हो गई, अब वो दूसरे के निकाह में आई है, तो वो जो पहले शौहर की बच्ची है वो इस शौहर के लिए भी अगर इसने उसके साथ बीवी वाला ताल्लुक कायम कर लिया है तो फिर इसके लिए भी वो बेटी की मानत है। फैलम तकूनू दखल तुम बिहिन्ना, और अगर तुमने उनके साथ हमबिस्तरी या सोबत न की हो, फला गुनाह अलैकुम, तो उस सूरत में तुम पर कोई गुनाह नहीं है। وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे सुल्ब से हैं, यानी तुम्हारी बहुएं लेकिन तुम्हारे सगे बेटों की बीवियां, वो बोल रहे बेटे वगैरह जो है उनकी बीवियों की बात नहीं आ रही। وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، یعنی دو بہنوں کو بیکوٹ میں کام لاؤ، یہ بھی منع ہے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو اس سے پہلے ہو چکا. جاہلیت کے دور میں یہ بھی ہو جاتا تھا کہ دو دو بہنیں بیکوٹ ایک ہی شوہر کے گھر میں ہوتی تھی. اسی کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور بھتیجی کو بھی بیکوٹ ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا. خالہ اور بھانجی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نکاح میں، جیسے دو بہنیں نہیں جمع کی جا سکتی، ایسے ہی جو ہے یہ بھی جو بالکل اس سے نیکسٹ جنریشن کا رشتہ ہے، ان کو بھی جمع کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ خواتین جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں شوہر والیاں، وہ بھی جو ہے جب تک کہ ان کو وہاں سے طلاق نہ ہو یا وہ فاتح اور فوت نہ ہو جائے، اتنی دیر تک وہ کسی دوسرے مرد کے لیے وہ بھی جو ہے محرم ہے. الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، سوائے اس کے کہ جو کنیزیں ہیں جو تمہاری ملک میں ہیں، یعنی تمہاری ملکیت ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے تم پر. واحل لکم ما وراء ذلکم، اور حلال کی گئی ہیں ان کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں، یعنی یہ صرف ایکسیپشن بتائی گئی جو حلال نہیں ہے، ان کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ سب حلال ہیں. کن شرائط کے ساتھ؟ ان تبتغوا باموالکم، بشرطے کہ تم انہیں طلب کرو اپنے مالوں کے بدلے میں، یعنی مہر کے ذریعے سے. محسنین، قید نکاح میں لانے کے لیے. غیر مسافحین، نہ کہ محض کوئی اپنی جنسی ضرورت یا مستی نکالنے کے لیے، شہوت رانی کے لیے. گویا کہ اس میں یہ شرائط بتا دی گئی کہ اب جو باقی خواتین حلال ہوں گی وہ ان شرائط کے ساتھ ہیں. نمبر ون، زبان کے ذریعے سے ایجاب اور قبول. نمبر ٹو، مہر. نمبر تین، قید نکاح میں لانا، یعنی یہ جو رشتہ ہے یہ غیر متعینہ مدت کے لیے، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. اگر اس کو کسی فکس پیریڈ کے لیے کر لیا تو یہی تو وہ متاح، جو کہ منع ہے، جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس میں اثر یہ ہے کہ اس میں کوئی خفیہ دوستیاں، کوئی مستی نکالنے والا کام نہ ہو، بلکہ کم از کم دو مردوں کی موجودگی میں باقاعدہ، دو گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ نکاح ہونا چاہیے، کوئی چھپے کرنے کا یہ کام نہیں. فما استمتعتم به منهن، پھر جن سے تم نے فائدہ اٹھایا ہو، یعنی جن کے ساتھ بیوی والا تعلق قائم کیا ہو، فآتوهن اجورهن فریضہ، تو دو ادا کرو انہیں ان کے مہر جو مقررہ ہیں. ولا گناہ علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس پہ جس پر کہ تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس مہر کو متعین کر لینے کے بعد. باہمی رضامندی سے جیسے اس میں کمی ہو سکتی ہے ویسے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. راضی تو پھر دونوں طرح ہی آدمی ہے نا، کہ راضی صرف اس طرح ہی ہے کہ جناب پہلے 1,00,000 طے کر لیا تھا، اب 25,000 پہ ہی جان چھوٹ جائے، وہ 1,00,000 کا 1,25,000 کیوں نہیں ہو سکتا، وہ بھی تو باہمی رضامندی سے ہی ہے. تو یہ جو ورنہ کم از کم جو ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے جو طے کیا ہوا ہے. تو جس چیز پر بھی تم آپس میں رضامندی سے جو ہے اگری کر لو وہ اسے متعین کر لینے کے بعد، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان اللہ کان علیمن حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی نہ رکھتا و تم میں سے طاقت، ینکح المحصنات، کہ وہ نکاح کر سکے آزاد خاندانی عورت کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ. ینکح المحصنات المؤمنات، آزاد خاندانی مؤمنہ خواتین کے ساتھ. فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو پھر وہ نکاح کرے اس سے جو تمہاری ملک یمین ہے، یعنی جو لونیاں ہیں جو کہ مومنہ کنیز ہیں. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو بھی. ہو سکتا ہے کہ کسی لونی کا ایمان کسی آزاد خاندانی خاتون سے بھی بڑھ کر. بعضکم من بعض، اور تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو، بہرحال تم نوع انسانی میں سے ہی ہو. فن کے ہوں ہننا بھی اس نے اہل ہننا، تو ان سے نکاح کیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. وہ آتوں اجور ہننا بالمعروف، اور انہیں بھی ان کے مہر دیا کرو معروف طریقے کے مطابق. مہر کی دیکھیے کتنی زیادہ جو ہے وہ بار بار تلقین آ رہی ہے، اور ہمارے ہاں یہ ایک بڑی ہی نان سیریس قسم کی ایکٹیویٹی سمجھی جاتی ہے. جب کبھی بھی کسی جگہ پر محفل نکاح میں شرکت کا موقع ہوا और वहां पर अगर वो निकाह खां की जिम्मेदारी भी अदा करनी पड़ी तो अक्सर जब पूछा कि जनाब मेहर अजी जो मर्जी लिख दीजिए कौन सा किसी लेना देना है, हालांकि बार बार इसके मतलब इतनी तलकीन आ रही है कि इसको तय होना चाहिए, मुतय्यन होना चाहिए और ये जो खानदानी हैसियत है लड़के की उसके मुताबिक ही होना चाहिए, ना उससे बहुत ज्यादा गैर जरूरी बढ़ चढ़ कर मुतालबा करना चाहिए और ना ही उन्हें कम रखना चाहिए। और इसकी एक बड़ी अमली सी शक्ल ये भी कि जिसमें आदमी बात की खराबियों से भी बच सकता है कि जो भी लड़के वालों की तरफ से उस मौके पर जो जेवरात तोहफे के तौर पर पेश किए जाते हैं अगर वही जो है कह दिया जाए कि ये मेहर है तो हर कोई अपनी हिम्मत और हैसियत के मुताबिक ही जेवरात बनाता है और उसमें बाद में ये इस बात का भी कुछ नहीं, मेहर तो बहरहाल देके वापस नहीं लिया जा सकता, वरना ये जेवर बाद में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इख्तलाफ हो गया तो निकालो हमने जो जेवरात तुम चढ़ाए थे। तो ये सारी जो ज्यादतियां जो बाजिश से कुरान ने मना किया है कि जो माल दे चुके उसको वापस ना लो, इन सबसे भी इंसान बच भी सकता है, अपनी हिम्मत और हैसियत के मुताबिक हो जाएगा, कोई कर्ज और उधार भी नहीं रहेगा। तो ये भी एक अमली सी शक्ल है और अगर अल्लाह ने इससे ज्यादा वसत दी है कि जेवर भी तोहफे के तौर पर दे और मेहर अलग से भी लिखाए बहुत अच्छी बात है, नूरुल्लाह नूर, लेकिन वो एक सीरियस एक्टिविटी अपने जिम्मे एक लाइबिलिटी समझ के, और पसंदीदा ये है कि वो लाइबिलिटी देन एंड देयर सेटल कर दी जाए, बल्कि मुलाकात से पहले वो मेहर जो है वो उसको तोहफा पेश कर दिया जाए, ये है उसकी असल स्पिरिट। वो तो सिर्फ एक्सेप्शन है कि जिसमें कहा गया है कि उसको वो डेफर भी किया जा सकता है। तो फरमाया कि आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ, तो उन्हें दो उनके मेहर मारूफ तरीके के मुताबिक, मुहसनातिन, वो भी अफीफा पाक दामन हो और कैद निकाह में लाने के लिए हो, गैर मुसाफिहातिन, ना के शहवतरानी करने वालियां, वला मुत्तखिजात अखदान, और ना ही कोई जो है वो छुपी दोस्तियां या याराने पालने वालियां। ये जो सारा मामलात जो हमारे यहाँ फिल्मों में ड्रामों में लव अफेयर्स और ये सब कुछ जो है, दीन में इसकी हरगिज किसी पहलू से कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि देखिए कि कमीजों के बारे में भी ये कहा गया है कि वो भी पाकीजा खानदानी हो, ऐसी ना हो कि ये खुफिया दोस्तियां, ये जो भी आशनाइयां पालना और ये सब कुछ करना इस किस्म का मामला ना हो, बल्कि पाकदामनी के तरीके से कैद निकाह मिलाने के लिए हो। फायदा और सिन्ना, बस जब वो निकाह कर ले, फाइन आतई ना बिफाशिन, और इसके बाद अगर वो किसी बदकारी का यानी जिना वगैरह का इर्तिकाब करें, पाले हिन्न निस्फ मा अलल मुहसनात मिन अल आजाद, तो उन पर है आधी सजा उससे जो के आजाद औरतों पर है, जिसका जिक्र आगे मैंने कहा कि सूरह नूर में इंशाल्लाह आ जाएगा। ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, और ये कमीजों से निकाह की इजाजत भी उसके लिए है जो तुम में से गुनाह में पड़ने से डरता हो। वइन तस्बिरू खैरुल लकुम, और अगर तुम सबर करो तो ये वान तस्बिरू, और तुम्हारा सबर करना ही जो है खैरुल लकुम, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे नौजवान जो अभी शादी न कर सकते हो तो उन्हें चाहिए कि फिर वो रोजा रखें। रोजा जो है ये इंसान के उस जज्बे को एतदाल में रखने वाला है, और जब तक इंसान का निकाह ना हो उसे रोजों के जरिए से उसको अपने इस जज्बे को कंट्रोल में रखना चाहिए। इस पर हम इंशाल्लाह चार रखते पढ़ लेते हैं, फिर अल्लाह ने चाहा तो आगे बढ़ेंगे।